माधव कुंज बिहारी। गोपी जना वल्लभ गिरिवर धारी, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यमुना तीरावन चारी, यमुना तीरावन चारी, जय राधा माधव गिरधारी, राधा गिरधारी राधे राधे, जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ, बल दिवा जय सुभद्रा, जय जय प्रभुपाद प्रभुपाद प्रभुपाद, जय जय प्रभुपाद। श्री प्रभुपाद की ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं, देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयामुदीरये, नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया, भगवती उत्तम श्लोके भक्तिरभवती नैष्टिकी। आज हम श्रीमद् भागवतम के दसम स्कंद का तीसरा अध्याय, इनका शीर्षक है कृष्ण जन्म, श्लोक संख्या नंबर 31। सभी लोग कृपा करके मेरे पीछे दोहराइए। विश्वम ये तत्पतनु निशान्ते, विश्वम यदत् विश्वम ये एतत्पतनु निशान्ते, विश्वम यदत् विश्वं यदेतत्त्वतनु निशान्ते यथा अवाकाशं पुरुषः परो भवान् यथा अवकाशं पुरुषः परो भवान् बिभर्ति स्वयं मम गर्भगो बिभर्ति सोऽयं मम गर्भगो भूत् अहो निर्लोकस्य विडम्बनम् इत अहो निर्लोकस्य विडम्बनम् इत विश्वं येतत्पतनु निशान्ते विश्वं यतेतत्पतनु निशान्ते यथावकाशं पुरुषः परो भवान् यथावकाशं पुरुषः परो भवान् बिभर्ति सोऽयं मम गर्भगो बुध बिभर्ति सोऽयं मम गर्भगो भूत् अहो निर्लोकस्य विडम्बनं हित अहो निर्लोकस्य विडम्बनं हित
Thank you.
शब्दार्थ इस प्रकार है, विश्वम संपूर्ण विश्व को, एतद् चर तथा अचर सृष्टि से युक्त स्वतनो अपने शरीर के भीतर निशान्ते संसार के समय, संहार के समय यथावकाशम बिना कठिनाई के आपके शरीर में शरण, पुरुषः भगवान, परः दिव्य भगवान भावन भवान आप विभर्ति पालन करते हैं, सह वही भगवान, अयम वरूप मम मेरा, गर्भ मेरे गर्भ में आया, अभूत हुआ, अहो अहो नृलोकस्य जीवों के इस जगत का विडम्बनम सोच पाना कठिन है कि निसंदेह तथा वह अनुवाद और तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद ऋषि भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा, श्रील प्रभुपाद की संहार के समय चार संसार, संहार के समय चर तथा अचर जीवों से युक्त सारी सृष्टि आपके दिव्य शरीर में प्रवेश कर जाती है और बिना कठिनाई के बाही व बिना कठिनाई के वही रह जाती है, किंतु अब वही दिव्य रूप मेरे गर्भ में जन्म ले चुका है। लोग इस पर विश्वास नहीं करेंगे और मेरा हसी पात्र बन जाएगा। तात्पर्य, चैतन्य चरितामृत में बतलाया गया है कि भगवान की प्रेम भक्ति दो प्रकार की होती है, ऐश्वर्य पूर्ण तथा ऐश्वर्य स्थिल। असली ईश्वर पूर्ण ऐश्वर्य स्थिल भक्ति से शुद्ध प्रेम के बल पर प्रारंभ होता है। प्रेमांजन छुरिता भक्ति विलोचनेना संत सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति, यम श्याम सुंदरम अचिंत गुण स्वरूपम गोविंदमादि पुरुषम तम हम भजामि। शुद्ध भक्त जन अपनी आंखों में प्रेम का अंजन लगाकर भगवान श्याम सुंदर मुरलीधर को दोनों हाथों में बांसुरी झूलाते हुए देखना चाहते हैं। यह स्वरूप वृंदावन वासियों के लिए उपलब्ध है जो भगवान के उस विष्णु अथवा नारायण रूप से प्रेम नहीं करते जो वैकुंठ में वैकुंठ के पूजित है, जहां भक्तगण उनके ऐश्वर्य की प्रशंसा करते हैं, अपितु वे उनके श्याम सुंदर स्वरूप से प्रेम करते हैं। यद्यपि देवकी को वृंदावन पद प्राप्त नहीं है, किंतु वे वृंदावन पद के निकट हैं। वृंदावन पद पर कृष्ण की गाता यशोदा गाता नहीं माता होगा। वृंदावन पद पर कृष्ण की माता यशोदा है, जबकि मथुरा तथा द्वारिका पद पर कृष्ण की माता देवकी है। मथुरा तथा द्वारिका में भगवान का प्रेम ऐश्वर्य से मिश्रित रहता है, किंतु वृंदावन में भगवान का ऐश्वर्य प्रदर्शित नहीं होता। भगवान की प्रेम भक्ति की पांच अवस्थाएं हैं, शांत दास्य साख्य वात्सल्य तथा माधुर्य। देवकी वात्सल्य पद पर है, वे अपने शाश्वत पुत्र कृष्ण के साथ प्रेम व्यापार करना चाहती थी, इसलिए वे चाहती थी कि भगवान अपना विष्णु का ऐश्वर्यशाली स्वरूप समेट ले। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने इस श्लोक की टीका में इस तथ्य पर विशेष प्रकाश डाला है। भक्ति, भगवान तथा भक्त, यह भौतिक जगत से संबंध नहीं रहते, इसकी पुष्टि भगवद गीता में हुई गई है 14वें अध्याय के 26वें श्लोक में। मामचयो अभ्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते सगुणति समति त्यायतन ब्रह्म भूयाय कल्पते। जो अनन्य भक्ति के आध्यात्मिक कार्यों में अपने को लगाता है, वह तुरंत ही प्रकृति के गुणों को लांग कर आध्यात्मिक पद को प्राप्त होता है। भक्ति में मनुष्य प्रारंभ से ही दिव्य पद पर स्थित रहता है, अथवा वसुदेव तथा देवकी शुद्ध भक्ति पद पर स्थित होने से इस भौतिक जगत से परे और उन्हें जिस भौतिक जगत से परे हैं और उन्हें भौतिक भय नहीं सताता, किंतु दिव्य जगत में शुद्ध भक्ति के कारण गहन प्रेम के फलस्वरूप ऐसा ही भय बनाया रहता है। जैसे कि भगवत गीता में कहा गया है, भक्तिया माम अभिज्ञानाति यावंच अस्मि तत्वता, तथा श्रीमद् भागवत से पुष्ट होता है, भक्तिया अहमे क्या ग्रहा। भक्ति के बिना भगवान की आध्यात्मिक स्थिति को समझा नहीं जा सकता। भक्ति ही तीन अवस्थाएं मानी जा सकती है, गुणीभूत, प्रधानीभूत तथा केवल, और उनके भी तीन विभेद हैं, ज्ञान ज्ञानमयी तथा रति या प्रेम, अर्थात सामान्य ज्ञान, ज्ञान मिश्र प्रेम तथा शुद्ध प्रेम। ज्ञान से बिना किसी परिवर्तन के केवल दिव्य आनंद का अनुभव किया जा सकता है। यह अनुभूति मन भूति कहलाती है। ज्ञानमयी अवस्था में भगवान के दिव्य ऐश्वर्य का अनुभव होता है, किंतु शुद्ध प्रेम या रति अवस्था में पहुंच कर भगवान के कृष्ण या राम रूप की अनुभूति होती है। यही वांछनीय है। मथुरई रस में तो मनुष्य भगवान से अनुरक्त हो जाते हैं। श्री विग्रह निष्ठा रूपादि, तब भगवान तथा भक्त में प्रेम व्यवहार चालू होता है। व्रज भूमि या वृंदावन में अपने हाथ में बांसुरी लिए हुए कृष्ण की विशेष महत माधुरी विराजते द्वारा वर्णित है। हाथ में बांसुरी लिए भगवान का स्वरूप अत्यंत आकर्षक है, और इस स्वरूप से श्रीमती राधा रानी या राधिका विशेष आकृष्ट होती है। वे कृष्ण के साथ आनंदमय सानिध्य का भोग करती हैं। कभी कभी लोग यह नहीं समझ पाते कि श्रीमद् भागवत में राधिका के नाम का उल्लेख क्यों नहीं हुआ। वास्तव में राधिका को आराधना शब्द से समझाया जा सकता है, जिसका अर्थ है कि वह कृष्ण के साथ उत्तम प्रेम का आनंद भोग करती है। देवकी नहीं चाहती थी कि विष्णु को जन्म देने के कारण उनका उपहास हो, अतः वे दो भाव वाले कृष्ण को चाह रही थी, इसलिए उन्होंने भगवान से अपना स्वरूप बदलने के लिए प्रार्थना की। होम ज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानंजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोविष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप गदामयं ददाति स्वपदांतिकम्। वंदेहं श्री गुरु श्रीयुतपदकमलं श्री गुरुन वैष्णवांश्च श्री रूपं सहग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं साद्वदूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितंश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानु सुदे देवी प्रणमामि हरि प्रिये। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु भयवच पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री वासादि श्री गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो यहाँ पर देवकी माता भगवान की स्तुति गाते हुए बता रहे कि वो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान जो कि जब अपने आप को विस्तार करते, जब वही भगवान जब पुरुष अवतार को धारण करते हैं महाविष्णु के रूप में, तो जब महाविष्णु जब श्वास को जब छोड़ते हैं तो जिस प्रकार हमारे शरीर में रोम है वैसे उनके शरीर में अनंत ब्रह्मांड उत्पन्न होते हैं, और वही कारणोदक्षाय विष्णु सभी ब्रह्मांडों में गर्भोदक्षाय विष्णु के रूप में प्रवेश होते हैं, और उनके ही गर्भ से नाभि कमल से ब्रह्मा जी का जन्म होता है और इस प्रकार सृष्टि की रचना होती है। तो ऐसे एक दो ब्रह्मांड की बात नहीं की जा रही है, अनेक अनेक ब्रह्मांड जो कि महाविष्णु के शरीर में जैसे रोम जैसे हमारे हैं वैसे उनके सारे शरीर में अनंत ब्रह्मांड उत्पन्न होते हैं, और वही महाविष्णु जब श्वास लेते हैं तो सभी का सभी जितना भी पूरा विश्व है वो सब उनके गर्भ के अंदर प्रवेश कर देता है और सभी कुछ यथारूप में रहता है, और जब श्वास छोड़ते हैं तो पुनः वही ब्रह्मांड बाहर निकलकर पुनः यथारूप से जहां से उनका सृष्टि के जो कर्म के जो चक्र रुके हुए थे वहां से पुनः वो शुरुआत होता है। तो ऐसे महाविष्णु केवल श्वास लेने मात्र से सृष्टि का उत्पत्ति होता है और श्वास छोड़ने मात्र से सृष्टि की उत्पत्ति होती है और श्वास लेने मात्र से सृष्टि प्रलय में डूब जाता है। तो वैसे महाविष्णु के एक श्वास में ब्रह्मा जी का एक ब्रह्मा जी का आयु मान गया है, और वो जो ब्रह्मा जी जिसके एक दिन जो है हमारा जो कलयुग जो 432,000 उसको दुगना करेंगे द्वापर युग, और उसको तीन गुना करेंगे त्रेता युग, उनको चार गुना करेंगे तो सतयुग, ऐसे सत्य त्रेता द्वापर कली ये जब 1,000 बार चलता है तब ब्रह्मा जी का एक दिन, और वो भी एक दिन में 12 घंटा होता है, और वैसे ब्रह्मा जी एक दिन जो कि 1000 जो चतुर्युग चलता है जिसके अंदर 14 मनु आकर जाते हैं। अब हमारा जो सातवां मनु जो कि विवस्वान मनु का ये काल चल रहा है, जिसके यानी कि अब ब्रह्मा जी का ये जो शुरुआत 51 दिवस का प्रथम दिवस 51 वर्ष का प्रथम दिवस चल रहा है, यानी कि अब ब्रह्मा जी का जन्मदिन चल रहा है। ये जितना भी है केवल ब्रह्मा जी का जन्मदिन है। और वैसे ब्रह्मा जी 100 साल तक जीते हैं। अब वैसे ब्रह्मा जब 100 साल उनका जब पूर्ण होता है तब नारायण श्वास ले लेते हैं तो सब प्रलय में डूब जाता है, कुछ भी नहीं बचता है। ऐसी एक जब मैं शुरुआत में हरे कृष्ण आंदोलन में जुड़ने के पहले एक पादरी से तब मैं ज्यादा चर्चा करता था भगवान के विषय में, तो वो पादरी का यही मत था कि ये जो जितने भी हिंदू है ये जितना जो उपासना करता है ये सब व्यर्थ की उपासना है। तो उनका यही तर्क होता था कि देखो ये विग्रह, ये वो कहते थे मूर्ति, इस मूर्ति में कोई प्राण नहीं है। तो मैंने कहा कैसे, तो बोला देखो श्वास भी नहीं लेते। तो कुछ समय के बाद जब मैं हरे कृष्ण आंदोलन में जुड़कर जब ये जानकारी प्राप्त हुई तो मैं उनको जाकर सुनाया कि श्वास लेने भी कभी मत बोलना, क्योंकि एक बार श्वास ले लिए तो सभी समेट जाएंगे। तो वैसे भगवान केवल श्वास भी लेते हैं तो पूरा ब्रह्मांड प्रलय में डूब जाता है। तो वो महाविष्णु जिसके शरीर में अनंत ब्रह्मांड उत्पन्न होते हैं, अनंत ब्रह्मा जी की उत्पत्ति होती है, वैसे महाविष्णु देवकी माता कहती है कि मेरे गर्भ में कैसे आ गया। तो हालांकि देवकी माता तो जान गई कि भक्ति के आधार पर देवकी माता इस बात को जानती थी कि वही पूर्ण पुरुषोत्तम मेरे गर्भ में मेरे भक्ति के रसास्वादन को पूर्ण करने के लिए, एक वात्सल्य रस को पूर्ण करने के लिए मेरे गर्भ में प्रकट हुए हैं, हालांकि मेरे गर्भ से ही जन्म लिए। लेकिन देवकी माता को ये चिंता थी कि लोग मेरा उपहास करेंगे, लोग मेरा मजाक उड़ाएं, अरे देखिए वो जो पूरे ब्रह्मांड के जिसके अंदर पूरा ब्रह्मांड समेटा है और वही भगवान इनके गर्भ में जन्म लिया, तो लोग मेरा उपहास करेंगे, इसलिए आप चार भुजाओं को छोड़कर दो भुजाओं के रूप में बालक के रूप में मेरे सामने आ जाइए। ऐसे ही जो भक्त जो है वो भगवान से इसी प्रकार के प्रार्थना, एक और एक जांच पर रामायण में यह वर्णन आता है, कौशल्या माता जब उनको जब प्रभु रामचंद्र जी के भगवान जब भगवान वो चाहती थी कि भगवान मेरे पुत्र के रूप में जन्म ले, तो वही प्रभु रामचंद्र जी चतुर्भुज के रूप में प्रकट हुए शुरुआत में। तब जैसे ही प्रकट हुए तो इन्होंने कहा ये क्या, दो भुजाओं में आ जाओ, इतने इतने बड़े थोड़ी, तो दो भुजाओं में आ गए, तो दो भुजाओं में आ गए और युवावस्था में थे, तो केवल 15-16 साल के युवा, बोले बच्चे ऐसे थोड़ी होते और छोटे होते, तो और छोटे हो, तो अब इतने इतने छोटे हुए कि अब हाथ चार पैरों से वो चलते थे, दो हाथ दो पैर थे, तो बोले इतने भी नहीं, इससे भी छोटे होते हैं, इतने छोटे कि मेरे गोद में समा जाए, तो वो और छोटे हो गए, उनके गोद में समा गए। फिर वो कहने लगे अरे बच्चे जब जन्म लेते तो रोते, तब रामचंद्र जी रोना शुरू किए। तो भगवान के भक्त जिस प्रकार याचना करते हैं भगवान उस प्रकार उनके समक्ष प्रकट होते हैं उनके भक्ति के रस को रसास्वादन करने के लिए। तो यहाँ पर ये देवकी का ये इस प्रकार की प्रार्थना जो दिखाई पड़ रही है कि देवकी प्रार्थना कर रही है कि कैसे मेरे गर्भ में, इसी प्रकार की ऐसे ही एक प्रार्थना जो कि हमें तीसरे स्कंद में देवहूति माता कपिल देव से करते हुए कहती है। देवती माता कहती है कि हे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान, हालांकि तुम भगवान हो लेकिन तत्पर भी जो कि जिसके जिसके नाभि कमल में पूरा ब्रह्मांड अटका हुआ है वैसा भगवान मेरे गर्भ में कैसे अटक गए। देवती माता इस प्रकार कहती है, स्वत्वम भात्रों में झटरे ना नाता कथम नु यशोदर एतदसीत विश्वम युगान्ते वत पत्र एक शेति स्म माया शिशुर अग्निर्पान। तो कहती है स्वत्वम भात्रों में झटरे ना नाता, आप स्वयं जो भगवान कथम नु मेरे गर्भ के अंदर जिसके नाभि कमल में जिसके नाभ में जठरेना नाथा पूरा जो कि पूरे विश्व के नाथ है वैसे भगवान कथम नु यशो उदर मेरे गर्भ में कैसे आ गया। और ऐसे यहां पर देवती माता कहती है कि हाँ ये हो भी सकता है। तो क्या कहती है फिर दूसरी दूसरे दूसरे आगे कहती है कि विश्वम युगान्ते वत पत्र एक, जब पूरा विश्व जब प्रलय में जब डूबता है तो वही भगवान एक वट वृक्ष के जो पत्ते हैं उस पर लेटे हुए वही बाल गोपाल के रूप में वही भगवान लेटे हैं एक एक वट वृक्ष के पत्ते में और पूरा विश्व प्रलय में डूब रहा है और वो कर क्या रहे अपने ही अंगूठे को चूस रहे हैं। अग्निर पाना तो वैसे भगवान जो कि पूरा विश्व प्रलय में डूबा हुआ है फिर भी बालक के रूप में पत्ते में तैर रहे जब ऐसा अद्भुत कार्य कर सकते तो ये क्यों नहीं कर सकते, निश्चित कर सकते कि वो जो पूरे विश्व के नाथ हैं जिसके नाभि में पूरा विश्व ब्रह्मांड अटका हुआ है तो मेरे गर्भ में भी अटक सकते हैं, क्यों नहीं हो सकता है, संभव है। तो वहां पर आचार्यगण ये भी टीका लिखते हैं कि वो जिसल प्रभुपाद उसके तात्पर्य में लिखते हैं कि भगवान अपने अंगूठे को क्यों चूस रहे थे, क्योंकि जितने भी बड़े बड़े ऋषिगण जो भी बड़े बड़े भक्त हुए हैं वो भगवान से यही याचना करते कि ये भगवान आपके चरण कमल की भक्ति हमें देना। और क्योंकि उनकी ऐसी प्रार्थना बार बार उनके चरण के प्रति होने के नाते यहाँ पर भगवान ये विचार में पड़े कि मेरे चरण में ऐसा है क्या, मेरे चरण में ऐसा कौन सा अमृत बहता है कि पूरे भक्त मेरे चरण के पीछे लगे। तो अब अपने चरण का रस लेने के लिए अब तो बड़प्पन में तो नहीं कर सकते, अगर बड़प्पन में अगर अंगूठे को चूसेंगे तो लोग उपहास करेंगे तो मेरा हंसी उड़ेगा। इसलिए उन्होंने क्या किया, बाल अवस्था को ग्रहण करते हुए बाल गोपाल के रूप में अपने ही अंगूठे को चूसने लगे। तो वैसे ही श्री प्रभुपाद आगे इसी प्रकार लिखते हैं कि भगवान अपने भक्त के अंदर कितना रस मिल रहा उनको जानने के लिए भगवान ऐसे कर रहे हैं, वही भगवान अपने भक्त के रसास्वादन करने के लिए वही पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रकट हुए, राधा रानी के अंदर कितना रस मिल रहा है उसे जानने के लिए। तो वैसे यहाँ पर ठीक इसी तरह ये जो प्रार्थना यहाँ पर देवकी कर रही है और देवकी माता कहते हुए इस प्रकार वर्णन कर रही है कि ये कैसे ये अद्भुत है। तो जब तक व्यक्ति इस बात को तब तक नहीं जान सकता जब तक व्यक्ति भक्ति के भाव को स्वीकारता नहीं। इसलिए प्रभुपाद इसके तात्पर्य में इस श्लोक को कोट करते हैं कि प्रेमांजन छुरिता भक्ति विलोचनेना। जब तक अपने जीवन में जब तक कोई प्रेम का अंजन या अपने आंखों में जब तक अपने प्रेम का अंजन को नहीं लगाता तब तक वो इस दृश्य को नहीं देख सकते। ऐसे ही प्रार्थना बिल्वा मंगल ठाकुर करते हैं। बिल्वा मंगल ठाकुर कहते हैं कि यत रोम रंग पूर्ति विभाव रक्षा वारा जन्मति बहुवरा विश्वमूर्ध तमनाथ अरविंद दृश्यम यशोदा पानीर द्वयंतम स्वप्न स्वयं बहुवह। तो कहते हैं कि यद रोम रंग परिपूर्ण वो जो भगवान उन्होंने जब वराह का जब रूप लिए, वराह अवतार जब धारण किया, तो उनके एक रोम में पूरे संसार का समुन्दर को अगर डाल दिया जाए तो भी कम पड़ेगा। पूरे विश्व का, पूरे ब्रह्मांड के समुन्दर को डाले तो उनके रोम में जब वो इतना बड़ा छिद्र है कि वो सारा का सारा समुन्दर समा जाएगा। और वही वह भगवान जब वृंदावन में बाल गोपाल के रूप में जब प्रकट हुए तो यशोदा मैया उसे नहलाने के लिए एक बकेट पानी डालती है तो नहला दिया, चलो नाना हो गया। तो केवल एक ही बकेट में नाना हो जाता है। वही पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का, जिसके रोम में पूरा समुन्दर का पानी भी कम पड़ता है। तो वैसे भगवान के विषय में जानकारी लेना ये तब संभव है जब व्यक्ति भगवान अपने जीवन में भगवान की भक्ति को स्वीकारता है। इसलिए भक्तिया माम अभिज्ञानाति यावंच अस्मि तत्वता, जब तक व्यक्ति अपने जीवन में भक्ति को नहीं स्वीकारता तब तक व्यक्ति इस बात को समझ नहीं पाएगा कि ये कैसे संभव है। जैसे ब्रह्मा जी जब भगवान को भगवान से प्रार्थना कर रहे थे, जो कि तीसरे स्कंद में जहां पर वर्णन आता है, ब्रह्मा जी ये प्रार्थना करते कि हे भगवान, मैं जब सृष्टि का रचना जब करूंगा तो उस सृष्टि की रचना में कहीं मैं आपको भूल ना जाऊं, तो मुझे इस बात का बड़ा डर लगता है, तो मेरे लिए क्या उपाय। तब भगवान उनको कहते तथा आत्मनि लोकस्य भक्ति युक्त समाहिता दृष्टास्ति माम तम ब्रह्म मई लोकम स्वम आत्मना। तो वह कहते हैं कि तथा आत्मनि लोकस्य, मुझे तुम क्या करना हर स्थान पे दृश्यति माम तत् ब्रह्मन ब्रह्मा, ए ब्रह्मा मुझे दृश्यति, तुम मुझे हर स्थान में देखना। कैसे ये संभव है? भक्ति युक्त समाहिता, जब तुम भक्ति युक्त रहेंगे तब तुम मुझे हर स्थान पर दर्शन करोगे, और हर स्थान पर तुम्हें इस प्रकार दर्शन होगा कि मैं हर एक अणु में भी उपस्थित हूं। ब्रह्मा जो अंडांतरस्तु परमाणु क्षीयांतरस्तम, वही भगवान वही परमात्मा के रूप में हर एक अणु में भी उपस्थित है, और इसी कारण से हर वस्तु का अपना अपना जो स्वरूप है वो अपने आप में प्रकाशित है। कब? जब वही परमात्मा के रूप में हर एक अणु में विराजित है। तो वैसे भगवान कहते हैं कि तुम मुझे हर स्थान पर देखोगे, साथ में ये भी देखोगे कि मई लोका, मेरे अंदर ही पूरा विश्व अटका हुआ है, त्वाम तुम भी मेरे अंदर हो, आत्मना और ये जितने भी जीव आत्मा है मुझसे पृथक है, ये दृश्य तुम देख पाओगे। तो बताते विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर इनके तात्पर्य में लिखते हुए समझाते हैं कि तुम्हें उस प्रकार दर्शन होगा जिस प्रकार मैंने अपनी माता यशोदा को पूरा विश्व ब्रह्मांड अपने मुख में दिखाया था। तो यशोदा मैया ने जब कृष्ण को उन्हें सजा देने के लिए उन्होंने कहा चलो मुंह खोलो दिखाओ तुमने मट्टी खाया है क्या नहीं, तो जैसे ही कृष्ण ने अपना मुख खोला तो पूरा विश्व ब्रह्मांड उन्हें दिखाई पड़ा, और उस विश्व ब्रह्मांड में एक पृथ्वी, उस पृथ्वी में भारत और उसमें वृंदावन, वृंदावन के अंदर यशोदा मैया कृष्ण को कह रहे मुंह खोलो तो उसके अंदर और एक ब्रह्मांड, और उसके अंदर और एक, ऐसे अनेक अनेक ब्रह्मांड दिख रहे। मैया देखकर हैरान होगी, यशोदा मैया विचार करने लगी ये है कौन। तो कुछ समय के लिए भगवान ने वहां पर अपने वात्सल्य रस के जो योग माया को हटाकर ऐश्वर्य रस को भर दिए, और एकाएक यशोदा मैया आश्चर्यजनक होते हुए अपने उस पुत्र को नहीं समझ पा रही थी कि ये कौन है, कुछ क्षण के लिए उन्हें महसूस हुआ कि यही भगवान है, और तुरंत ही भगवान ने अपने मुख को बंद किया और एक सुंदर मुस्कान दिया, और मुस्कान देखते ही मैया भूल गई, अरे भगवान थोड़ी ये तो मेरा पुत्र है, मैं भी भोकला गई थी। तो वैसे केवल एक मुस्कान देखते ही यशोदा मैया ये भूल गई, क्योंकि वापस योग माया का पर्दा छा गया और पुनः वात्सल्य रस उत्पन्न हो गए। तो वैसे जो यशोदा मैया को दर्शन दिया, यहां पर कृष्ण, यहां पर नारायण ब्रह्मा जी को कह रहे, वैसे ही तुम भी दर्शन करोगे और मैं तुम्हें दिखाऊंगा। और आगे दिखाते हैं वही भगवान कृष्ण, आगे जाकर दिखाते कि अपने आप को विस्तार करते ग्वाल बाल और गैयों में, ब्रह्मो विमोहन लीला में, जहां पर हमें लीला चर्चा सुनने में आता है कि किस प्रकार उन्होंने भगवान की भगवत्ता को परीक्षण करने के लिए उन्होंने जब चुरा लिया था, तो वही भगवान ने अपने आप को अनेक अनेक ग्वाल बाल और गैयों में विस्तारित कर दिया, बछड़ों में विस्तार किए, और जितने भी थे वो सभी विष्णु तत्व थे। तो वैसे ब्रह्मा जी को आगे जाकर दिखाते भी हैं, और ये पहले से एक थोड़ा सा झलक देकर भगवान नारायण ब्रह्मा जी को आश्वासन दे रहे कि तुम चिंता मत करो, भय मत करो, तुम सृष्टि की रचना के जो कार्य है उसमें आगे बढ़ो। और फिर क्या कहते, आत्मना, तुम मुझे बाकी जीवों से अलग समझोगे। ये महत्वपूर्ण है कि अनेक बाकी जीवात्माओं से, जीवात्मा और परमात्माओं में भेद है। यही बात जो कि 15वें अध्याय में जहां पर वर्णन आता है, दो प्रकार के जीवों के विषय में वर्णन आता है पहले, फिर उसके बाद उत्तमस्व अन्यम परमात्मा इति उदाहरेत, वो इसके अलावा भी एक उत्तम पुरुष है। द्वय में पुरुषे लोक अक्षर अक्षर एव च, ये दो हुए, एक जो कि इस भौतिक संसार में गिरते हैं, दूसरा जो शाश्वत नित्य सिद्ध है, शर अक्षर एव च। और इसके अलावा उत्तमस्व अन्यम, इसके अलावा और एक है, ये दो के अलावा और एक है, और वो है परमात्मा, जो इससे भिन्न है। और ऐसा दृश्य कब संभव है, तो हे ब्रह्मा भक्तिया युक्तिया, जब तुम भक्ति के युक्त रहोगे तब तुम इस प्रकार के दृश्य देख पाओगे। तो उदाहरण देते, यथा तु सर्वभूतेषु दारेषु अग्निम इव स्थितम प्रतीक्षित माम लोक जायत तरही एव कश्मल। तो कहते हैं कि जब जिस प्रकार, उदाहरण देते हैं कि जिस प्रकार लकड़ी में अग्नि उपस्थित है, लकड़ी के दारू के अंदर अग्नि उपस्थित रहती है, तो अग्नि जो है वो स्थिर है, या अग्नि जो है एक ही है, लेकिन विभिन्न प्रकार के लकड़ियां हो सकती है। उसी प्रकार विभिन्न प्रकार के 84 लाख योनियों दिखाई पड़ेंगे, लेकिन परमात्मा एक ही है, सभी जगह पर वही परमात्मा उपस्थित है। जायते तरही एव कश्मल, तुम उसी क्षण जैसे तुम इस प्रकार दर्शन करोगे, तुम्हारे हृदय का सारा कलमश है वो उसी क्षण नष्ट हो जाएगा, जब तुम इस दृश्य से देखोगे। तो यहां पर प्रश्न यह उठता है कि वो देखने के बाद हमारे मन का कलमश दूर होगा क्या? कलमश दूर होने के बाद दिखाई पड़ेगा ये प्रश्न। तो जब मैं विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के टीका को पढ़ रहा था, तब उस समय ये दिखा, प्रतीक्षिता यानी कि प्रतीक्षक्षिता, यानी कि तुम्हें उस प्रकार देखने का अभ्यास करना है, शुड सी, उसे देखना है, उसका पहले व्यक्ति को उसका अभ्यास करना है, और जब अभ्यास करेंगे तब भगवान की अहेतु की कृपा से दर्शन होगा, अन्यथा यह संभव नहीं है। तो जब हम प्रयास करेंगे तब भगवान हमारी प्रयास को देखकर आशीर्वाद देंगे, जिससे हमें यह दर्शन होगा कि हर स्थान पर वही भगवान उपस्थित हैं। और वैसे जो जो कश्मल जो कि पांच प्रकार के कश्मल जो कि तामिश्र तमो महा मोहत महातमो अंध तामिश्रम, ऐसे पांच प्रकार के जो माया है इस कश ये इस प्रकार के कलमश से वो छूट जाएगा। कब? जब वो भगवान की अहेतु की कृपा को प्राप्त करेगा। तो भक्तियामाम अभी जान आती, जब व्यक्ति भक्ति के द्वारा इस प्रकार का अभ्यास करेगा तो ही वो संभव है। तो यहाँ पर देवकी माता जो कि इस भक्ति के भाव से देखी, और देवकी माता के पास ये दृष्टि थी और इसीलिए देवकी माता यथारूप में सब कुछ देख सकती थी, लेकिन उन लोग जो नहीं देख सकते उन लोग उपहास करेंगे जिनके पास ऐसी दृष्टि नहीं है। तो इसलिए वो प्रार्थना कर रही थी कि आप बालक के रूप में प्रकट हो जाओ। तो ये जो इस वचन से हम ये हमें दिखाई पड़ता है कि किस प्रकार देवकी माता उनके हृदय से वात्सल्य रस प्रकट हो रहा है। तो वात्सल्य रस कैसे प्रकट हो रहा है? वो कह रही है, प्रार्थना कर रही है कि आप बालक के रूप में प्रकट हो जाओ। तो यहाँ पर जो पांच प्रकार के रसों के विषय में जो श्रील प्रभुपाद चर्चा करते हैं, शांत रस जहाँ पर केवल व्यक्ति के अंदर एक ही भावना रहता है और वो क्या है कि भगवान महान है। तो शांत रस में एक चीज की आवश्यकता है। प्रथम तो यह है कि सारे भौतिक कामनाओं से रहित, और दूसरा है कि भगवान की महिमा, भगवान महान है, इस ऐश्वर्य को धारण करना, जिसको कहते हैं शांत रस। अब शांत रस से एक और ऊपर वाला रस है जिसको कहते हैं दास्य रस। अब इस दास्य रस में दो गुण भरे हुए हैं, एक तो भगवान महान है और साथ ही साथ में ये भी गुण भरे हैं कि मुझे भगवान की सेवा करना है। अब शांत रस में सेवा की भावना दिखाई नहीं पड़ेगी, लेकिन दास रस में सेवा की एक एक्स्ट्रा ऐड होता है, तब वो दास्य रस बन जाता है। और दास रस से ऊपर वाला जो रस है जिसको कहते हैं वात्सल्य रस। अब वात्सल्य रस में और दास इससे ऊपर वाला जो रस है जिसको कहते हैं साक्ष्य रस। अब साक्ष्य रस में और जो दास रस में अंतर क्या है कि दास रस में जीवात्मा या भक्त अपने आप को भगवान से दूर रखता है या सेवा की भावनाओं में रहता है, लेकिन साक्ष्य रस में भक्त भगवान के एकदम करीब जाता है और भगवान के साथ मित्रता की भावना रखता है, और यहाँ तक कि भगवान के कंधे में हाथ वगैरह रखता है। इस प्रकार की जो भावना है उसको कहते हैं साक्ष्य रस। और इसके बाद एक और एक जो ऊपर वाला जो रस है जिसको कहते हैं वात्सल्य रस। अब इस वात्सल्य रस में भक्त भगवान को अपने आप को भगवान का प्रोटेक्टर समझता है या रक्षक समझता है। अभी जैसे कि शांत जो दास्य रस में क्या था कि भक्त भगवान को श्रेष्ठ समझता है, और साक्ष्य रस में क्या था कि भक्त और भगवान दोनों बराबर ही हैं। अब वात्सल्य रस में क्या होता है कि भक्त अपने आप को बड़ा समझता है, भगवान को छोटा समझता है, भगवान ये सोचता है कि भगवान मुझ पर निर्भर है। और इससे ऊपर वाला जो रस है जो कि है माधुर्य रस, और जो माधुर्य रस का रसास्वादन भगवान वृंदावन में पूर्ण रूप से करते हैं। द्वारिका में या मथुरा में यह दृश्य नहीं दिखाई पड़ता। द्वारिका में जहां पर भगवान केवल ऐश्वर्य रस का रसास्वादन ज्यादा करते हैं, जिसके जहां पर ऐश्वर्य प्रधान है, और मथुरा में ऐश्वर्य और माधुर्य प्रधान है, दोनों मिश्रण है, और वृंदावन में केवल माधुर्य ही प्रधान है। इसलिए वृंदावन जो कि सर्वश्रेष्ठ स्थान माना गया है भगवान के रसास्वादन के लिए, लेकिन ये मथुरा में या द्वारिका में नहीं दिखाई पड़ता है। जब भगवान कृष्ण जब कंस को मारने के लिए आए थे, भगवान कृष्ण और बलराम जी, तो उनके अंदरूनी इच्छा थी कि मैं अपने माता पिता वसुदेव और देवकी से मिलूंगा। तब उस समय उन्होंने कंस ने ऐसा चाल रचा था जिस चाल से उन्होंने उनको कुश्ती में लगा दिया और बड़े हिष्ट पुष्ट सुडेल व्यक्ति के साथ उनको युद्ध करना पड़ा। और कृष्ण का युद्ध हुआ जिस युद्ध में कृष्ण ने उन्हें मार दिया। और जब कंस का भी वध कर दिया, जब गए अपने माता पिता से मिलने के लिए, तो वसुदेव और देवकी देखकर खड़े हो गए। अब कुछ कर नहीं रहे कि अरे ये लोग तो भगवान है। उसके कुछ क्षण पहले तो उन्हें लग रहा था कि मैं हम अपने पुत्र से मिलेंगे, लेकिन वो कुश्ती वगैरह देखकर वो सहमत हो गए कि हाँ यही भगवान है, इनको कोई नहीं मार सकता है। और वो ऐश्वर्य रस ज्यादा भर जाने के कारण इनके अंदर ये भावना नहीं हुई कि अब हम क्या करें, तो केवल देखकर खड़े रहकर उनको प्रणाम कर रहे थे। तो जब कृष्ण ने यह देखा कि अब इन लोग तो ऐश्वर्य रस में लग गए हैं, तो कृष्ण को अच्छा नहीं लगा। तो कृष्ण सोचने लगे कि अब कब वात्सल्य रस होगा, तो कृष्ण वहां पर रोने लग गए। अब जब कृष्ण रोने लग गए तो देवकी अपने गोद अपने आलिंगन करते हुए उनके आंसू को पोंछती है और फिर वापस से वात्सल्य रस शुरू हो जाता है। तो वैसे जो मथुरा जो है वो ऐश्वर्य और माधुर्य दोनों मिश्रित बताया गया है जहां पर। तो उस प्रकार इस वात्सल्य रस से श्रेष्ठ है माधुर्य रस, जहां पर मैं भक्ति पुरुषोत्तम महाराज का किताब पढ़ रहा था, उसमें ये घटना आती है जिसमें का बताया गया है कि एक समय भगवान कृष्ण राधा रानी को कहने लगे कि ये राधे, तुमसे बढ़कर कोई भक्त है ही नहीं, जब तक कोई तुम्हारे पास नहीं आएगा मैं उसको नहीं स्वीकारूंगा। तो राधा रानी हंसने लगी, बोले क्या कह रहे हो, मुझसे तो बड़े बड़े भक्त है, तुम्हारे बड़े बड़े सेवक है, जो कि मैया से ज्यादा स्नेह करने वाला और कौन है। तो कृष्ण ने कहा एक दिन बताऊंगा तुम्हें कि एक दिन मैं ये दिखलाऊंगा कि किस प्रकार मैया भी तुम्हारे सामने तुम्हारे चरण को छुएगी। तो राधा रानी हंसने लगी कि ये मजाक कर रहे हैं, और कृष्ण का तो स्वभाव है। तो हुआ क्या, एक समय की बात थी कि भगवान कृष्ण अपने गोपियों के साथ खेल रहे थे और खूब बहुत एकदम उसमें चुस्त हो गए थे उसी खेल में। तब मैया आकर देखने लगी, अरे कृष्ण यहां पर खेल रहे हैं। तो मैया डांटने लगी और उनके सखियों को डांटने लगी, तुम लोग मेरे लाला को यहां पर लेकर खेल रहे हो, ये अभी गैया चलाकर आया है, थक गया होगा, उन्हें सोने दो। तो ललिता आकर कहने लगी, देखो मैया ये तुम्हारा कृष्ण नहीं, ये हमारा कृष्ण है, तुम्हारा कृष्ण जाकर देखो घर पे सोया रहेगा, हमें नहीं पता तुम्हारा कृष्ण कहाँ है। बोला ऐसा, तो मैया गई घर पर, घर पर जाकर देखी, अरे कृष्ण तो लेटे हैं, तो वो कौन था। तो मैया विचार करने लगी, दोनों में भेद नहीं है, हूबहू एक जैसा, चाल ढलन नाचना गाना बोल चाल सब एक जैसा। तब तो मैया के मन में एक युक्ति आई, मैया ने राधा रानी को और उनके सखियों को बुलाया, देखो तुम्हारे कृष्ण में मेरे कृष्ण में कोई अंतर नहीं है, तो क्यों ना हम तुम्हारे और मेरे कृष्ण को साथ में नचाए, तो कितना अद्भुत दृश्य होगा। तो मैं राधा रानी के नहीं नहीं नहीं, तुम्हारा कृष्ण मेरा कृष्ण अगर साथ में नाचेगा तो कंफ्यूज हो जाएगा कि कौन सा तुम्हारा है कौन सा मेरा है, तो वो फिर पता नहीं लगेगा। तब उन्हों कहने लगी मैया, अरे नहीं नहीं तुम्हारे कृष्ण में हम कुछ चिन्ह रख देंगे। तो बोला ठीक है, जब तुम इतने कह रही हो तो हो जाए। तो यहां पर राधा रानी अपने कृष्ण को लाती है और अपने कृष्ण के ऊपर वो चंदन लगाती है। अब चंदन लगाती है तब नाचने दोनों जन नाचना शुरू करते हैं। और नाच रहे इतना नाच रहे, और सारे सखिया और यशोदा मैया खूब आनंद ले रहे, वाह कितना सुंदर दृश्य है, वाह वाह वाह। और कहती बहुत इतने चुस्त हो गए नाचने में दोनों कृष्ण की, अब दोनों घूमते घूमते अब एक बन गए। अब यशोदा भैया, अरे मेरा कृष्ण क्या है, ये तो चद्दर वाला कृष्ण है। तो राधा रानी कहने लगी चलो अब चलते हैं, कृष्ण को कहने लगी। तो कृष्ण जाने लगे तो मैया कह रही है राधे मेरा कृष्ण का है, तो बोला देखो इसके माथे में चंदन है, मेरा कृष्ण है, तुम्हारा कृष्ण वालों से। तो बोले राधे तुम तो बहुत कुछ जानती हो, तुम सब कुछ जानती हो, कृपा करके बता दो, मेरा प्राण चला जाएगा कृष्ण के बगैर, मैं कृष्ण के बगैर कैसे जी पाऊंगी। तो राधा रानी फिर कृष्ण के तरफ देखने लगे, और कृष्ण अपना इशारा करने देखा। अब इतना वो गिड़गिड़ाने लगी मैया की, उनके पैरों को पकड़ ली राधा रानी के। तब राधा रानी समझ गए कि कृष्ण ने इस बात को प्रूफ करके दिखाया। तब ललिता और सखी कहने लगी अरे नहीं नहीं मैया, तुम्हारा कृष्ण देखो वो थक गया था, वो हाथ मुंह धोकर आपके कक्ष में कहीं विश्राम करता होगा, जाकर देखिए। तो गए सीधे मैया, तो जाकर देखा कक्ष में सो रहे हैं। तब उनको जान पर ध्यान आए। तो वैसे भगवान यहाँ पर वात्सल्य रस से भी माधुर्य रस कैसे श्रेष्ठ, उस माधुर्य में श्रीमती राधा रानी कैसे श्रेष्ठ है, इस बात को ये यहाँ पर पुष्ट करते हैं। हरे कोई प्रश्न कोई जिज्ञासा है तो राष्ट्र प्रभु कोई कमेंट। कोई प्रश्न हरे कृष्ण तत्व प्रभु हरे कृष्ण। थैंक यू सो मच। श्री प्रभुपाद की।